जर्मनी में पुनर्जागरण। जर्मनी में इस संक्रमण कालीन अवधि में यथार्थवादियों और नामवादियों में भीषण विवाद हुआ था, लेकिन मानवतावाद की स्वीकृति नहीं रुकी। मानवतावाद को इस महत्वपूर्ण कारण से बढ़ावा मिला था कि उससे धर्मशास्त्रीय अध्ययन को ज़्यादा तर्कसंगति और मान्यता हासिल होगी। जर्मन विश्वविद्यालयों में पुनर्जागरण के मूल्यों को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा था वह वास्तव में प्रशासनिक समस्या ही थी, यानी धन की कमी और मौजूदा पाठ्यक्रम में लचीलेपन का अभाव। बहरहाल जल्दी ही किसी न किसी तरह से तालमेल अवश्य किए गए थे, क्योंकि हम पीटर ल्यूडर 1415 से 74 को, जब जर्मन मानवतावादियों की सबसे पहले पीढ़ी के थे, में अपने मृत्यु पर्यंत लैटिन कवियों में बिना बाधा के भाषण देते देखते हैं। भाषणों की एक समानांतर श्रृंखला 1467 से 70 के दौरान फ्लोरेंसवादी जैकोपो पब्लिसियो द्वारा एक फुर्त लिपजिंग ग्राको और बासले में दी गई थी। जर्मन मानवतावादियों की प्रथम श्रेणी में आते हैं पीटर ल्यूडर 1415 से 74, जैकब बिम्ब फैलिंग 1450 से 1528, रोडाल्फ अग्रिकोला 1443 से 1485 और उनके शिष्य कॉनराड सेल्टिस 1459 से 1508। उत्कट देश प्रेम की भावना वह तत्व है जो इन्हें अपने इस समय के लेखकों से भिन्न करता है। अग्रिकोला ने क्लासिकी ढंग के लेखन पर इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहा। जर्मनी के पास भी वैसी ही भव्य प्राचीन परंपरा है, यह दिखाने के लिए कॉनराड सेल्टिस ने 10वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्यों और प्रशस्ति परक कविताओं के पठन पाठन का क्रम फिर से आरंभ किया। उसके इस परिश्रम के लिए फ्रेडरिक तृतीय ने सेल्टिस को राजकवि की उपाधि से अलंकृत किया। धर्म दर्शन में नई रुचि पैदा होने से हिब्रू के अध्ययन को भी ग्रीक के अलावा काफ़ी बढ़ावा मिला, जैसा कि जोहान्नेस रिचलिन 1455 से 1500 के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो कि आल्पस पर्वत के उत्तर में हिब्रू के पहले व्याकरण के लेखक हैं। इसकी वजह यह है कि रिचलिन और उनके अनुयायी आरंभिक विश्वासों को उनकी सादगी और पवित्रता के साथ पुनर्जीवित करना चाहते थे, इसलिए वे हिब्रू और ग्रीक के अध्ययन की ओर मुड़े, क्योंकि स्वाभाविक तौर से यह महसूस किया गया कि ईसाइयत के धर्म दर्शन में परंपरागत होने के लिए भी जरूरी है कि ईसाई धर्म के मूल स्रोतों का उनकी मूल भाषाओं में ही अध्ययन किया जाए। अतः इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अपने इन अत्यंत विनम्र प्रयासों से भी रिचलिन को एक ओर जहां अपने अनुयायियों के साथ भारी विवादों में फंसना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें कुछ कट्टरपंथी दबाव गुटों का सामना भी करना पड़ा। कोलोन डोमिनिकन, जिसे 1509 में हिंदू साहित्य पर पाबंदी लगा दी थी, के प्रति रिचलिन के विरोध की अनिवार्यता जर्मनी में पांडित्य और मानवतावाद के बीच होने वाले संघर्ष के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। जर्मनी के तर्कवादी सुधारवादी रुझान के साथ रिचलिन के संबंधों का परिणाम यह निकला कि उस पर धर्मद्रोह का अभियोग लगाया गया तथा उसे 6 साल तक लंबे मुकदमे को झेलना पड़ा। लेकिन रिचलिन के अनुयायियों के लिए केवल यही उदाहरण आखिरी नहीं था। जर्मनी में लूथर से पहले के सुधारवादी आंदोलन के उग्रवादी युवा समर्थक थे उलरिच वान हटन, उन्हें नाइट का खिताब मिला हुआ था। हटन ने चर्च की अनेक बुराइयों जैसे भाई भतीजावाद, कर्तव्य पालन के प्रति विमुखता, पादरियों के अहंकार आदि के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अंत में यह साहसपूर्ण घोषणा की कि पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। अपने एक सहयोगी क्रोटस रूबिनस के साथ मिलकर उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था लेटर्स ऑफ ऑब्स्क्योर मैन, अज्ञात नाम व्यक्तियों के पत्र। यह रचना इरेस्मस की प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशस्ति से मिलती जुलती है। इसमें रहस्यवादियों पर बड़ा कटु प्रहार है और सुधार आंदोलन से पहले इसे लेकर सारे यूरोप में काफ़ी मजाक रहा। 16वीं सदी के मध्य तथा अंतिम वर्षों तक जर्मन कविता इन नवीन विचारों के प्रभाववश ट्रावर की राजदरबारी कविता की परंपरा से बदलकर अधिक लोकवादी हो गई। जर्मन ट्रापडोर अब प्रेम की बजाय राजनीति के बारे में अधिक लिखने लगे। राजदरबार का स्थान अब नगर ने ले लिया था। मैंने सिंगरों के स्थान पर मिस्टर सिंगर, आ गए थे। मिनेसिंगर जहाँ अभिजात या अमीर वर्ग के होते थे, वहाँ पीटर सिंगर शहरी दस्तकार वर्ग से संबंधित थे। वे उन्हीं नगरों में गीत रचना करते थे जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी। इस काल का एक विख्यात मिस्टर सिंगर हांस साचो 1494 से 1576 था, जो न्यू रेमबर्ग का एक मोची था। इसकी सर्वोत्तम कृतियों में दी नाइटिंगल ऑफ विटेनवर्ग की कोकिला शीर्षक गीत भी है, जो लूथर की प्रशंसा में लिखा गया था। उत्तर के कला इतिहास में जर्मन कला का स्थान बड़ा ऊंचा रहा है। अनेक वर्षों तक जर्मन कला का प्रतिनिधित्व अल्ब्रेक्ट ड्यूरर 1471 से 1518 द्वारा किया जाता रहा है, जो उस दौर में सर्वसम्मति से आल्पस के उत्तर के महानतम कलाकारों में से एक माने जाते रहे हैं। ड्यूरर ने स्वयं बड़ा कष्ट उठाते हुए अत्यंत परिश्रम पूर्वक कला की नई अवधारणाओं, प्रकृति के प्रति लगाव और उसका यथार्थ चित्रण करने की अवधारणाओं को लागू किया। अपनी सीखने की इसी भावना के चलते वह दो बार 1994 में और 1494 में और 1505 में इटली गए, जहां उन पर मांतेगना और पोलाइलो जैसे इतालवी कलाकारों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ड्यूरर ने स्वयं कास्ट नक्काशी, ताम्र शिल्प और चारकोल रेखांकन में विशेषज्ञता हासिल की थी, जैसा कि उनकी कृतियों एडम एंड ईव 1504, नाइट सूरवीर, डेथ एव डेविल मृत्यु और शैतान, और फोर एपास्टल्स धर्म प्रचारक तथा कई अन्य से प्रकट है। ड्यूरर की कला कुछ अपवादों, मिसाल के लिए एबडक्शन आने यूनिकॉर्न 1516 को छोड़कर मूलतः धार्मिक कला है। वास्तव में उनका स्वयं का सैद्धांतिक लेखन इस तथ्य पर बल देता है कि धार्मिक कला ही अन्य सभी कला रूपों से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में रखकर देखने पर इस बात को समझना कठिन नहीं है। और हर हालत में यह एक तरह की उनकी सीमा तो है ही, लेकिन यह सीमा सिर्फ अकेले ड्यूरर की ही सीमा नहीं थी। अतः सौंदर्य के नियमों की उनकी खोज ने उनकी मदद की और अंततः ड्यूरर परवर्ती कोथिला कला की सीमाओं से ऊपर उठ सके। वास्तव वे पहले ऐसे जर्मन कलाकार हैं जो ऐसा कर पाए हैं। एक अन्य प्रतिष्ठित जर्मन कलाकार हांस हाल्विन कनिष्ठ हैं, जिनमें 1497 से 1541 हैं, जिनमें संभवतः ड्यूरर जैसी गहराई का तो अभाव है, लेकिन उनमें एक अधिक व्यापक कलात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ड्यूरर की तरह हाल्विन भी महान इतालवी कलाकारों से प्रभावित थे, लेकिन जहाँ भी उनसे अलग थे वह अंतर धार्मिक विषय वस्तु में ही दिखाई देता था। हाल्विन की कृति द विर्जिन विद द फैमिली ऑफ बर्गोमास्टर मेयर अपनी टोन में सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उसमें जर्मन यथार्थवाद तथा लैटिन गरिमा या क्लासिकवाद का एक सतर्क सुझाव भी दृष्टिगोचर होता है। ऑक्सबुर्ग में जहाँ से हाल्विन आए थे, एक दिलचस्प रुझान विकसित हुआ था। एक संपन्न व्यावसायिक नगर के रूप में ऑक्सबुर्ग में व्यापारियों का एक बड़ा प्रभावशाली समुदाय था, जिनकी वैयक्तिक गरिमा की खोज को व्यक्ति चित्र बनाने की कला के उदय में देखा जा सकता है। यह काम बड़े पैमाने पर ऑक्सबुर्ग के प्रमुख चित्रकार हांस बुर्गमायर 1573-1531 ने किया, जिनके चित्र वेनिस के प्रभाव के तहत रंगों के भरपूर और व्यापक प्रयोग के लिए विख्यात है। कलाकार पर ऐसे बाह्य प्रभाव हमेशा सकारात्मक परिणाम ही सामने लाते हैं, जैसा कि ल्यूकास कानोच की कृतियों में देखा जा सकता है, जिनमें क्लासिकी आकार गैर क्लासिकीय दिखाई देने लगते हैं। इनके न्यूड नग्न चित्रों में कलात्मकता नहीं बल्कि नंगापन दिखाई देता है। इस तरह इतालवी पुनर्जागरण की अर्थवत्ता अब एकदम व्यर्थ होने लगती है। जर्मन लोगों का महान योगदान श्रेष्ठ छपाई कला के क्षेत्र में रहा। 1477 में जाहेन गुटेनबर्ग ने लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई की धीमी पद्धति के स्थान पर सचल टाइप का भी आविष्कार किया। इस पद्धति में चूंकि प्रत्येक अक्षर एक साँचे में ढाला जाता था, अतः एक ही साँचे से कितने ही अक्षर ढाले जा सकते थे। इस प्रकार इससे मुद्रण में एक हद तक एकरूपता निश्चित हो गई थी और उत्पादन लागत में भी कमी आई। गुटनबर्ग के युगांतरकारी प्रयासों से यूरोप के सभी प्रमुख नगरों जैसे सेरिबोन, मेंजू, न्यूरेमवर्ग, अम्स्टर्डम, बासिल, लिपजिंग, लंदन और मैड्रिड में अधिक विकसित किस्म के मुद्रणालय स्थापित हो गए। किंतु मुद्रणालयों की संख्या में वृद्धि का यह अर्थ नहीं कि शिक्षण व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण हो गया। वस्तुतः निरक्षरता अब भी काफी समय तक कायम रही और प्रकाशित पुस्तकें भी सस्ती नहीं थी। 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक ऐसा नहीं हो पाया था कि एक छपी हुई कृति के दाम इतनी तेजी से नीचे गिर जाए कि वह मूल पांडुलिपि की प्रतिलिपि के आठवें हिस्से तक हो। एक खास बात यह भी है कि प्रिंटिंग प्रेस ने एकदम ही धर्मनिरपेक्षता या मानवतावादी शिक्षा के ध्येय को बढ़ावा नहीं दिया था। 1500 ईस्वी से पहले तक यूरोप में छपने वाली सभी पुस्तकों की करीब आधी तादाद धार्मिक पुस्तकें ही थीं। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में ही सबसे ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें छपती थीं। फिर भी छपी हुई सामग्री के परिमाण में वह वृद्धि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। मिसाल के लिए इंग्लैंड में 1500 ईस्वी में एक पुस्तक की तुलना में 1550 ईस्वी में चार पुस्तकें छपने लगी थी। न्यू टेस्टामेंट के लूथरकृत अनुवाद का पहला संस्करण 1522 में 5000 प्रतियों का छपा था, किंतु 10 सप्ताह बाद ही इसका दूसरा संस्करण छापना पड़ा। उसकी पुस्तिका नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन की 4000 प्रतियाँ 5 दिन में ही बिक गई। यद्यपि इस प्रकार की पुस्तकें विशिष्ट सामाजिक और बौद्धिक स्तर से संबद्ध थी, फिर भी इस प्रकार के आंकड़े यह संकेत करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था के बावजूद अधिकाधिक लोगों की पहुंच अपने समय में प्रकाशित महत्वपूर्ण कृतियों तक होती जा रही थी। 1550 ईस्वी तक लिपजिंग में ही 46 पुस्तक विक्रेता थे।